सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो प्रभुत्व वाला असीम ज्ञानी बादशाह पवित्र और शांति देने वाला है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने हमें इस्लाम धर्म की राह दिखाई और उसे 5 महान स्तंभों पर स्थापित किया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं जो महिमा और सम्मान वाला है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, उन पर सर्वोत्तम दुरूद और सलाम हो, और उनके परिवार साथियों और उनके नेक अनुसरण करने वालों पर भी। इसके बाद ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, उसके आदेशों का पालन करो, और जिन कर्मों से उसने रोका है उनसे दूर रहो। निश्चय ही अल्लाह डर रखने वालों से प्रेम करता है, और अंत डरने वालों के लिए बनाया गया है। तो अल्लाह का डर यानी तकवा दुनिया और आखरत यानी परलोक की भलाई का कारण है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह का डर रखेंगे उनके लिए उनके रब के पास बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे और उनके लिए पवित्र जीवन संगिनी होंगी, और अल्लाह की प्रसन्नता होगी, और अल्लाह अपने भक्तों को देख रहा है। और उसने कहा, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और डर रखते तो हम उनके लिए आकाश और धरती से बरकतों के द्वार खोल देते। और उसने हाजियों को तकवा का आदेश देते हुए कहा, और पाथे तैयार करो, निस्संदेह सबसे उत्तम पाथे अल्लाह की आज्ञाकारिता है, और मुझसे डरो हे समझदार लोगों। और उसने समस्त मानवता को आदेश दिया कि वो भलाई और अल्लाह के डर यानी तक्वा में सहयोग करें। उसने कहा, एक दूसरे की सहायता करो तथा पाप और अत्याचार में एक दूसरे की सहायता न करो, और अल्लाह से डरते रहो। निस्संदेह अल्लाह का दंड कड़ा है। तकवा यानी डर अल्लाह के धर्म को थामना है और उसके नियमों पर अमल करना है। उसके दंड से डरते हुए और उसके अच्छे इनाम की आशा रखते हुए ये वही धर्म है जिसे अल्लाह ने उसी दिन पूरा किया कर दिया जब ये आयत उतरी, आज मैंने तुम्हारे धर्म को पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे धर्म के रूप में इस्लाम को पसंद किया। इस्लाम का धर्म 3 स्तरों पर आधारित है, जिनमें सबसे ऊंचा स्तर एहसान है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार बताया। एहसान यह है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे जैसे कि तू उसे देख रहा है, और अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वो तुझे देख रहा है। और अल्लाह ने फरमाया, जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छा किया उनके लिए भलाई है, और परलोक का घर तो निश्चित रूप से बेहतर है, और ये अच्छा ठिकाना डर रखने वालों का, और ये अच्छा ठिकाना डर रखने वालों का। धर्म का दूसरा स्तर ईमान है, जो कि जुबान से कहना, दिल से विश्वास करना और अंगों से अमल करना है। यह आज्ञाकारिता से बढ़ता और पाप से घटता है। ये 70 से अधिक शाखाओं वाला है, जिनमें सबसे ऊंचा है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और सबसे नीचा है रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना, और शर्म यानी लज्जा भी ईमान की एक शाखा है। ईमान में ये भी शामिल हैं, रिश्ता निभाना, माता पिता के साथ भलाई करना, सच्ची बात कहना, अच्छा बोलना, वादों और अनुबंधों को निभाना, और अच्छे आचरण। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को साझी न बनाओ, और माता पिता के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों, अनाथों, गरीबों, पास पड़ोस वालों, अजनबी पड़ोसियों, साथ चलने वालों, यात्रियों और अपने दासों के साथ भी भलाई करो। निस्संदेह अल्लाह अहंकारी और डींगे मारने वालों को पसंद नहीं करता। और कहा, ए ईमान लाने वालों, समझौतों का पूर्ण रूप से पालन करो। और कहा, मेरे बंदों से कह दो कि बात वही कहें जो उत्तम हो। शैतान तो उनके बीच उकसाकर फसाद डालता रहता है। निस्संदेह शैतान मनुष्य का प्रत्यक्ष शत्रु है। और कहा, पुण्य तथा पाप बराबर नहीं हो सकते, तुम उस तरीके से जवाब दो जो सबसे बेहतर हो। जब देखोगे कि वह व्यक्ति जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी, तब देखोगे कि वह व्यक्ति जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी जैसे वो घनिष्ठ मित्र हो गया। और ये गुण उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो धैर्यवान होते हैं, और उन्हीं को प्राप्त होता है जो बड़े सौभाग्य वाले होते हैं। ईमान में यह भी शामिल है, कठिनाई में सब्र करना, सुख में शुक्र करना, और पाप के बाद पछतावा और तौबा करना। अल्लाह ने कहा, निश्चय ही सब्र करने वालों को उनका बदला बिना हिसाब के दिया जाएगा। और कहा, और याद करो जब तुम्हारे रब ने घोषणा की थी, यदि तुम शुक्र करोगे तो मैं अवश्य तुम्हें और अधिक दूंगा। और कहा, अपने पालनहार से क्षमा याचना करो, फिर उसी की ओर ध्यान मग्न हो जाओ, वह तुम्हें एक निर्धारित अवधि तक अच्छा लाभ पहुंचाएगा और प्रत्येक श्रेष्ठ को उसकी श्रेष्ठता प्रदान करेगा। ईमान के स्तंभ 6 हैं, अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, और तकदीर यानी भाग्य पर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अल्लाह ने कहा, लेकिन नेकी तो ये है कि जो अल्लाह, आखिरत के दिन, फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाए। और कहा, निस्संदेह हमने हर चीज़ को एक अनुमान के अनुसार पैदा किया है, और ईमान के द्वारा ही दुनिया और आखिरत परलोक की भलाई और सफलता प्राप्त होती है। अल्लाह ताला ने कहा, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से अल्लाह ने ऐसे बागों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वे सदैव रहेंगे, और सदाबहार बागों में पवित्र निवास गिरहों का भी वादा है, और अल्लाह की प्रसन्नता और रजामंदी का जो सबसे बढ़कर है, ये ही सबसे बड़ी सफलता है। और उसने कहा, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में किसी शिर्क यानी जुल्म की मिलावट नहीं की, वही लोग भयमुक्त हैं और वही सीधे मार्ग पर हैं। और उसने कहा, निश्चय ही हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए दुनिया की ज़िंदगी में भी, और उस दिन भी जब गवाह खड़े किए जाएंगे। तो अल्लाह पर ईमान रखने में शामिल है कि उस पर ईमान लाएं। रब यानी पालनहार के रूप में सृष्टिकर्ता, सारी चीज़ों को पैदा करने वाला के रूप में, सारे ब्रह्मांड का संचालन करने वाले के रूप में, और उसकी उच्चतम विशेषताओं तथा सुंदर नामों वाले के रूप में, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, निश्चित ही तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श यानी सिंहासन पर विराजमान हुआ, वो रात को दिन पर ढांकता है जो तेजी से उसका पीछा करने में सक्रिय हैं, और सूर्य, चंद्रमा और तारे भी बनाए इस प्रकार कि वे उसके आदेश के काम में लगे हुए हैं। जान लो, उसी की सृष्टि और उसी का आदेश है। बहुत बरकत वाला है अल्लाह, सारे संसारों का पालनहार। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और छिपकर, निश्चय ही वो सीमा पार करने वालों को पसंद नहीं करता, और धरती में सुधार हो जाने के बाद उसमें बिगाड़ मत करो, और उसे भय और आशा के साथ पुकारो, निश्चय ही अल्लाह की दयालुता सत्कर्मी लोगों के निकट है। और हम फरिश्तों पर भी ईमान रखते हैं, जैसा कि अल्लाह ने कहा, और फरिश्ते अपने रब की गुणगान के साथ उसकी तस्बीह करते हैं, और धरती वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते रहते हैं। और हम उन किताबों पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने उतारी हैं, जिनमें तौरात, इंजील यानी बाइबल शामिल हैं, और अल्लाह ने कुरान को पहले की सब किताबों पर सत्यापन करने वाला बनाया। अल्लाह ने कहा, अल्लाह उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वो जीवित है, सबका सहारा है। उसने तुम पर यह किताब कुरान सत्य के साथ उतारी, इससे पहले की किताबों की पुष्टि करने वाली, और उसने तौरात और इंजील उतारी लोगों के लिए मार्ग दर्शन के रूप में, और उसने फुरकान यानी कुरान उतारी और कहा, और हमने तुम्हारी ओर यह किताब हक के साथ उतारी है जो उस किताब की पुष्टि करती है जो उससे पहले से मौजूद है और उसकी संरक्षक है, और हम अल्लाह के सभी रसूलों संदेशवाहकों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, निसंदेह हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को उनकी कौमों की ओर भेजा, फिर वो उनके पास साफ निशानियां लेकर आए, फिर हम उन लोगों से बदला लेकर रहे जिन्होंने अपराध किया, और ईमान वालों की सहायता करना तो हम पर एक हक है, और हम आखिरत और हम आखिरी दिन कयामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं जो कि बदले और हिसाब किताब का दिन है, जिसमें अल्लाह के मित्रों के लिए जन्नत यानी स्वर्ग और उसके दुश्मनों के लिए जहन्नम यानी नर्क और सज़ा होगी। अल्लाह ताला ने कहा, और आखिरी घर परलोक उन लोगों के लिए बेहतर है जो डर रखते हैं, तो क्या तुम समझते नहीं? और हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ने सभी घटनाओं और बातों का पहले से ही कदरी यानी नियोजन किया है और सारी मखलूक को अपने ज्ञान में लिख रखा है और उन्हीं के और उन्हीं को चाहा और पैदा किया। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह का यही नियम रहा है कि पहले के लोगों में भी जो पहले के लोगों में भी चला आया है, तथा अल्लाह का निश्चित किया आदेश पूरा होना ही है, और कहा, निश्चय ही अल्लाह अपने हुक्म को पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक कदर नियोजन बना रखा है, और नबी मोहम्मद ने इस्लाम को इस प्रकार समझाया, इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो, और यदि सामर्थ्य हो तो हज करो। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में ये बात शामिल है कि इबादत केवल अल्लाह का अधिकार है, इसमें कोई भी हिस्सा किसी और को नहीं दिया जा सकता, न फरिश्तों को, न नबियों को, न नेक लोगों को। अल्लाह ताला ने कहा, ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच सको, और कहा, अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो वरना तुम सज़ा पाने वालों में से हो जाओगे। और अल्लाह ने कहा, कहो, ए किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान हो कि हम केवल अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को साझी न ठहराएं, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के अलावा रब न बनाए, फिर यदि वे मुंह मोड़ लें तो कह दो, गवाह रहो, हम तो मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। इसी में आत्म सम्मान है, और यह कि झुकना केवल अल्लाह के सामने है। अल्लाह ताला का फरमान है, अगर अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ में डाल दे तो कोई दूसरा तो कोई उसे दूर नहीं कर सकता सिवाय उसके, और यदि वो तुम्हारे लिए किसी भलाई का इरादा करे तो कोई उसकी कृपा को रोक नहीं सकता, वो अपनी कृपा से जिसे चाहता है देता है, और वही क्षमाशील दयालु है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का मतलब यह है कि आपकी हर आज्ञा को माना जाए, आप जो बताएं उस पर यकीन किया जाए, और जिस प्रकार अपने और जिस प्रकार आपने अपने रब की इबादत की उसी प्रकार उसकी इबादत की जाए, यानी अल्लाह की इबादत केवल उसी तरीके से की जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित हो। अल्लाह ताला ने कहा, निसंदेह तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम ही में से है, तुम्हारी कष्ट तुम्हारा कष्ट उस पर भारी पड़ता है, वो तुम्हारे हित के लिए ललायित है, और ईमान वालों के लिए वो बड़ा कोमल और दयालु है। और कहा, जो लोग जो उस रसूल उस उम्मी यानी अर्पण नबी का अनुसरण करते हैं जिसे वो अपनी किताबों तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, और कहा, फिर अगर तुम किसी मामले में विवाद कर बैठो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की ओर लौटाओ, यदि तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो यही बात बेहतर है और इसका अंजाम अच्छा है। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संदेश वाहकता को मानने में ही सब झगड़ों का समाधान है और सीखने का एक स्रोत है। इसी से इबादतें एक समान होती हैं और उनके करने के तरीकों में अंतर नहीं होता। इससे हम नवाचारों बिदअतों से बच जाते हैं और केवल वही इबादत करते हैं जो किताब यानी कुरान और सुन्नत में बताई गई हो, और इसी से लोग एकजुट होते हैं और दिलों में मेल पैदा होता है। और इस्लाम के स्तंभों में दूसरा स्तंभ नमाज कायम करना, ताकि यह एक बंधन बने बंदे और उसके रब के बीच, और ये उसके बचाव का कारण हो और उसके समय के प्रबंधन का माध्यम बने, ताकि यह रास्ता बने जिससे बंदा अपने रब की निगरानी को महसूस कर सके और इस तरह वो जिम्मेदारियां निभाने और कर्ज को पूरा करने का अभ्यास करता है। और नमाज में बाहरी और भीतरी पवित्रता होती है और उसमें मानसिक और शारीरिक सफाई भी होती है। और जमात में नमाज पढ़ने से नमाज में जुड़ाव पैदा होता है, समाज में जुड़ाव पैदा होता है और एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है। अल्लाह ताला ने कहा, नमाजों का विशेष रूप से माध्यमिक नमाज यानी असर का ध्यान रखो तथा अल्लाह के लिए विनयपूर्वक खड़े रहो। और कहा, निस्संदेह नमाज ईमान वालों पर एक निर्धारित समय में वार्ज की गई है। और कहा, निसंदेह नमाज अश्लीलता और बुराई से रोकती है। और कहा, निश्चय ही सफल हो गए ईमान वाले जो अपनी नमाज में विनम्र रहने वाले हैं। और कहा, ए ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो लो और अपने सिरों का मसा करो और अपने पैरों को टखनों तक धो लो, और यदि तुम हालत जनाबत में हो तो तुम गुस्ल कर लो। और कहा, और दिन के दोनों सिरों में और रात के कुछ हिस्से में नमाज कायम करो, निसंदेह अच्छे काम बुरे कामों को मिटा देते हैं। ये याद दिलाना है याद रखने वालों के लिए। और इस्लाम के स्तंभों में से है ज़कात देना, यानी उस धन का एक हिस्सा देना जो मनुष्य कमाता है विशेष स्थानों में जिनका लाभ समाज के को मिलता है और उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और इसमें आत्मा का शुद्धिकरण होता है। लोभ तंगी और स्वार्थ से यह आत्मा को दान और देने का अभ्यास कराता है और इसमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों का ध्यान रखना शामिल है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है और समाज के व्यक्तियों को आपस में जोड़ना जिससे प्रेम उत्पन्न होता है, मेल जोल बढ़ता है और सामाजिक सहयोग हासिल होता है। अल्लाह ताला ने कहा, ज़कात दो और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे वो अल्लाह के पास पाओगे, निसंदेह अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। और अल्लाह ताला ने कहा, और मेरी दया प्रत्येक चीज़ को समोए हुए है, मैं उसे उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो अवज्ञा से बचेंगे, ज़कात देंगे और जो हमारी आयतों पर ईमान लाएंगे। और कहा, उनके धन से सदका यानी दान लो जिससे तुम उन्हें पवित्र और शुद्ध करोगे। और अल्लाह ताला ने कहा, निश्चय ही दान यानी सदकात केवल निर्धनों के लिए और गरीबों के लिए और उनके लिए जो उस पर काम करते हैं और उन लोगों के लिए जिनके दिलों का जोड़ जाता है और उनके लिए जिनके दिलों को जोड़ा जाता है और गर्दनों को छुड़ाने के लिए और कर्जदारों के लिए और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर के लिए हैं। यह अल्लाह की ओर से एक ठहराई हुई बात है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला बुद्धिमान है। और चौथा स्तंभ है रमज़ान के महीने का रोज़ा, जिसमें आत्माओं को धैर्य की आदत डाली जाती है और इच्छाओं का विरोध करने का अभ्यास कराया जाता है और भूखों की ज़रूरत का अनुभव कराया जाता है और आत्मा को बुरी आदतों से निकलने की शिक्षा दी जाती है। इसमें दुनिया की प्रेम का दिल पर हावी होना कम किया जाता है और ये विनम्रता और शरीर की सेहत का कारण बनता है। अल्लाह ताला ने कहा, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा अनिवार्य किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम डर रखने वाले बनो। फिर कहा, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया लोगों के लिए मार्गदर्शन और हिदायत तथा सही गलत में फ़र्क की खुली बातें। तो तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिन में गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए कठिनाई नहीं चाहता, और ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई करो उस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम उसका धन्यवाद करो। और पांचवा स्तंभ वह है जिसमें अल्लाह ने अपने घर के हाजियों को हज के कामों को पूरा करने की तौफीक दी, जिसमें आखिरत के दिन की याद दिलाई जाती है और रब और उसके आज्ञाओं का आत्मा में सम्मान भर दिया जाता है और उसके आदेशों को पूरी नम्रता और संतोष से स्वीकार किया जाता है हज में जमात के साथ अनुशासन है और उसमें जानवरों को ज़बह करके हदी नज़र और जुर्माने के रूप में लोगों को खाना खिलाना है और समय का सम्मान है और उसे लाभदायक कार्यों में लगाना है। अल्लाह ताला ने कहा, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, और अगर तुम रोके जाओ तो जैसी कुर्बानी मैसर हो कर दो। और कहा, हज तय किए हुए महीनों में होता है, तो जो इन महीनों में हज की नियत करे तो हज में कोई बेईमानी नहीं, कोई अवज्ञा नहीं और कोई झगड़ा नहीं, और जो भी भलाई तुम करो अल्लाह उसे खूब जानता है। फिर कहा, फिर जब तुम अरफात से निकलो तो अल्लाह को याद करो मशरे हराम के पास, और उसे याद करो जैसे उसने तुम्हें मार्गदर्शन दिया जबकि तुम इससे पहले गुमराहों में थे। अल्लाह के पवित्र घर के हाजियों, जो ध्यान और परवाह सऊदी अरब की सरकार देती है हरम शरीफ और पवित्र स्थानों की सेवा में, और जो सेवा और सुरक्षा की संस्थाओं के माध्यम से हाजियों को मिलता है, वो उन्हें ये संभव बनाती है कि वे अपने हज के कामों और इबादतों को सुरक्षा शांति और आसानी से कर सकें। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह हज के नियमों निर्देशों और व्यवस्था का पालन करे, क्योंकि यह शरीयत के उद्देश्यों को पूरा करने का एक हिस्सा है और यह एक धार्मिक कर्तव्य है, एक नैतिक जिम्मेदारी है और एक सभ्य व्यवहार है जो सहयोग और अनुशासन की भावना को प्रकट करता है और हाजियों की आवाजाही को सरल बनाता है और इबादतों के पालन को थकावट और कठिनाई से बचाकर आसान बनाता है। अल्लाह के पवित्र घर के हाजियों, रसूलुल्लाह ने अरफात में खड़े होकर खुतबा दिया और फिर जोहर और असर की नमाज एक साथ और छोटी यानी कसर करके पढ़ी, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। फिर मुजलफा की ओर गए और वहाँ मगरिब की नमाज 3 रकात और ऐशा की नमाज 2 रकातें मिलाकर पढ़ी और वहीं रात बिताई, यहाँ तक कि फजर की नमाज पढ़ी। फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते रहे जब तक उजाला हो गया। फिर मीना की ओर गए और जमरा अकबा को 7 कंकरियों से मारी। फिर अपनी कुर्बानी का जानवर ज़बह किया, सिर मुंडवाया तो पहले चरण के बंधन से मुक्ति पाली। फिर पवित्र घर काबा की ओर गए और काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाए, जिससे तवाफ इफाजा कहा जाता है। फिर मीना लौटे और वहां रात बिताई और तीनों तशरीक के दिनों में जमरात को कंकड़ी मारी। हर दिन 21 कंकड़ियां मारी जाती हैं, पहले छोटे जमरा, फिर मध्य छोटे और मध्य जमरा के बाद दुआ किया है, और फिर जमरातुल अकबा बड़े को कंकड़ी मारा। 2 दिन में जल्दी चले जाने की भी इजाज़त दी। अल्लाह ताला ने कहा, फिर जब तुम अपनी हज की रस्में पूरी कर लो तो अल्लाह को याद करो, और जैसे तुम अपने बाप दादों को याद करते हो या उससे भी अधिक याद करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, हे हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के कष्ट से बचा। यही वो लोग हैं जिन्हें उनके कामों से हिस्सा मिलेगा और अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह को गिने हुए दिनों में याद करो, तो जो कोई 2 दिनों में जल्दी चला जाए उस पर कोई पाप नहीं, और जो देर करे उस पर भी कोई पाप नहीं, बशर्ते वो डर रखने वाला हो। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। अल्लाह के घर के हाजियो, आपका आज का दिन एक अत्यंत शुभ और महान दिन है। इस दिन अल्लाह अनेक लोगों के को नरक की आग से मुक्ति प्रदान करता है और स्वयं निकट आकर अरफात के मैदान में उपस्थित लोगों पर फरिश्तों के समक्ष गर्व करता है। अतः अधिक से अधिक अल्लाह की प्रशंसा करो, उसको याद करो और उससे प्रार्थना करो, क्योंकि यह प्रार्थनाएं सुकियार होने की जगह हैं। अल्लाह ताला ने कहा, तुम्हारे रब ने कहा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को स्वीकार करूँगा। हे अल्लाह, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे कामों को आसान कर, हमारी संतानों को सुधार दे, हमें स्वर्ग में दाखिल कर और हमें आग से बचा। हे अल्लाह, हमारे हज को और हमारी इबादतों को स्वीकार कर और हमें अपना धन्यवाद, अपनी याद और अच्छी इबादत की तौफीक दे। हे अल्लाह, पूरब से पश्चिम तक सभी मुसलमानों की हालत सुधार दे, उनके दिलों को जोड़ दे, उनके सभी मामलों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले और उनके बीच प्रेम उत्पन्न कर दे। हे अल्लाह, हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के हालात संभाल, उनके भूखों को खाना दे, बेघर लोगों को आश्रम दे, डरे लोगों को सुरक्षा दे और उनके और उन्हें उनके दुश्मनों के बुरे से बचा। हे अल्लाह, मुस्लिम शासकों को हर भलाई की तौफीक दे और उन्हें मार्गदर्शन और परहेजगारी का कारण बना। हे अल्लाह, 2 पवित्र मस्जिदों के सेवक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके युवराज मोहम्मद बिन सलमान को सफलता दे और उन्हें इस्लाम और मुसलमानों के लिए किए गए अच्छे कामों का श्रेष्ठ बदला दे। पाक है तेरा रब इज्जत वाला उन बातों से जो वे कहते हैं, और सलाम हो भेजे गए रसूलों पर, और सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सब संसारों का पालनहार है, और अल्लाह की कृपा हो उसके निष्ठावान नबी पर।